Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE March 2022 examination in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
विश्व व्यापार मेले में आपका स्वागत है. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष में इस वर्ष के मेले का मुख्य आकर्षण है भारतीय ग्राम और कुटीर उद्योग प्रदर्शनी. इसे मेले के केंद्रीय पंडाल में लगाया गया है, जो नेहरू पार्क और इंदिरा सरोवर के बीच स्थित है. प्रदर्शनी में लगी दुकानों से आप भारत के कुछ स्वावलंबी गांवों का हाथ से बना सामान खरीद भी सकते हैं. पूरी जानकारी मेला पुस्तिका में है. धन्यवाद. विश्व व्यापार मेले में आपका स्वागत है. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष में इस वर्ष के मेले का मुख्य आकर्षण है भारतीय ग्राम और कुटीर उद्योग प्रदर्शनी. इसे मेले के केंद्रीय पंडाल में लगाया गया है, जो नेहरू पार्क और इंदिरा सरोवर के बीच स्थित है. प्रदर्शनी में लगी दुकानों से आप भारत के कुछ स्वावलंबी गांवों का हाथ से बना सामान खरीद भी सकते हैं. पूरी जानकारी मेला पुस्तिका में है. धन्यवाद.
संवाद दो.
क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ?
जी, मैं एक मुहावरा कोश की तलाश में हूँ.
मुहावरा कोश तो नहीं है, कोई अच्छा सा शब्द कोश ले लीजिए, उसी में मुहावरे भी मिल जाएंगे.
नहीं, साधारण कोशों में गिने चुने मुहावरे ही होते हैं.
मैं जानती हूँ, लेकिन उसके लिए तो आपको दरियागंज जाना होगा.
क्यों, यहाँ आसपास नहीं मिल सकता?
नहीं, यहाँ तो मुश्किल है. वैसे एक ऐप भी बन चुका है.
सच में? वह तो और भी अच्छा रहेगा.
क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ?
जी, मैं एक मुहावरा कोश की तलाश में हूँ.
मुहावरा कोश तो नहीं है, कोई अच्छा सा शब्द कोश ले लीजिए, उसी में मुहावरे भी मिल जाएंगे.
नहीं, साधारण कोशों में गिने चुने मुहावरे ही होते हैं.
मैं जानती हूँ, लेकिन उसके लिए तो आपको दरियागंज जाना होगा.
क्यों, यहाँ आसपास नहीं मिल सकता?
नहीं, यहाँ तो मुश्किल है. वैसे एक ऐप भी बन चुका है.
सच में? वह तो और भी अच्छा रहेगा.
संवाद तीन.
हेलो सरिता जी, मैं राजन बोल रहा हूँ. पता नहीं आपको याद है या नहीं, हम कानपुर में आपके भाई साहब दिनेश कुमार जी के घर पर मिले थे. उनके बेटे नलिन के जन्मदिन की पार्टी थी, उसने ही मुझे आपका नंबर दिया है. मैं और नलिन एक ही स्कूल में थे. मैं एक प्रवेश परीक्षा देने दिल्ली आया हूँ और परसों वापस चला जाऊंगा. दिनेश जी ने आपसे मिलने को कहा था और कुछ भेजा भी है आपके लिए. कृपया मेरा नंबर नोट कर लें और संदेश मिलते ही फोन करें. शुक्रिया. हेलो सरिता जी, मैं राजन बोल रहा हूँ. पता नहीं आपको याद है या नहीं, हम कानपुर में आपके भाई साहब दिनेश कुमार जी के घर पर मिले थे। उनके बेटे नलिन के जन्मदिन की पार्टी थी, उसने ही मुझे आपका नंबर दिया है। मैं और नलिन एक ही स्कूल में थे। मैं एक प्रवेश परीक्षा देने दिल्ली आया हूँ और परसों वापस चला जाऊँगा। दिनेश जी ने आपसे मिलने को कहा था और कुछ भेजा भी है आपके लिए। कृपया मेरा नंबर नोट कर लें और संदेश मिलते ही फ़ोन करें। शुक्रिया।
संवाद चार।
नमस्ते, कहिए क्या सेवा करूं?
जी, लखनऊ का एक टिकट दे दीजिए।
किस दर्जे का?
साधारण दर्जे का।
माफ कीजिए, सीटें नहीं हैं, केवल प्रतीक्षा सूची में डाल सकता हूं।
अरे बाप रे, एक सीट भी नहीं? प्रतीक्षा सूची कितनी लंबी है?
ज्यादा नहीं, 10वां स्थान चल रहा है। नहीं तो पहले दर्जे का टिकट ले लीजिए।
तो क्या पहले दर्जे में सीटें खाली हैं?
जी हाँ, लेकिन जल्दी फैसला कीजिए। नमस्ते, कहिए क्या सेवा करूं?
जी, लखनऊ का एक टिकट दे दीजिए।
किस दर्जे का?
साधारण दर्जे का।
माफ कीजिए, सीटें नहीं हैं, केवल प्रतीक्षा सूची में डाल सकता हूं।
अरे बाप रे, एक सीट भी नहीं? प्रतीक्षा सूची कितनी लंबी है?
ज्यादा नहीं, 10वां स्थान चल रहा है। नहीं तो पहले दर्जे का टिकट ले लीजिए।
तो क्या पहले दर्जे में सीटें खाली हैं?
जी हाँ, लेकिन जल्दी फैसला कीजिए। संवाद पांच।
अमेरिका ने फाइनल के रोमांचक मुकाबले में यूरोप चैंपियन नेदरलैंड्स को 2 गोलों से हराकर महिला फुटबॉल का विश्व कप फिर से अपने नाम कर लिया है। महिला फुटबॉल में अमेरिका का यह 4था विश्व कप है। नेदरलैंड्स की खिलाड़ियों ने खेल के पूर्वार्ध में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वे गोल करने में नाकाम रहीं। अमेरिका की ओर से कप्तान मेगन रैपिनो ने पेनल्टी से और रोज लेवेल ने 16 गज की रेखा के बाहर मैदान से गोल किया। रैपिनो को प्रतियोगिता में कुल 6 गोल करने के लिए स्वर्णिम बूट दिया गया। अमेरिका ने फाइनल के रोमांचक मुकाबले में यूरोप चैंपियन नेदरलैंड्स को 2 गोलों से हराकर महिला फुटबॉल का विश्व कप फिर से अपने नाम कर लिया है। महिला फुटबॉल में अमेरिका का यह 4था विश्व कप है। नेदरलैंड्स की खिलाड़ियों ने खेल के पूर्वार्ध में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वे गोल करने में नाकाम रहीं। अमेरिका की ओर से कप्तान मेगन रैपिनो ने पेनल्टी से और रोज लेवेल ने 16 गज की रेखा के बाहर मैदान से गोल किया। रैपिनो को प्रतियोगिता में कुल 6 गोल करने के लिए स्वर्णिम बूट दिया गया।
संवाद छे।
भाई साहब, मुजफ्फरपुर जाना था।
अब देखिए, महात्मा गांधी सेतु तो बंद हो गया है।
तब कौन सा रास्ता लेना होगा?
ऐसा कीजिए, आगे अशोक राजपथ आएगा, उस पर दाहिने मुड़ जाइए।
उसके बाद?
सीधे पटना के दूसरे छोर पर चले जाइए, दीघा ब्रिज मार्ग।
लेकिन वह तो बाईं तरफ ना हुआ?
माफ करें, बाईं तरफ मुड़िए, अशोक राजपथ पर।
और उसके बाद?
दीघा ब्रिज मार्ग पहुंचकर दाहिने मुड़ जाइएगा।
भाई साहब, मुजफ्फरपुर जाना था।
अब देखिए, महात्मा गांधी सेतु तो बंद हो गया है।
तब कौन सा रास्ता लेना होगा?
ऐसा कीजिए, आगे अशोक राजपथ आएगा, उस पर दाहिने मुड़ जाइए।
उसके बाद?
सीधे पटना के दूसरे छोर पर चले जाइए, दीघा ब्रिज मार्ग।
लेकिन वह तो बाईं तरफ ना हुआ?
माफ करें, बाईं तरफ मुड़िए, अशोक राजपथ पर,
और उसके बाद
दीघा ब्रिज मार्ग पहुंचकर दाहिने मुड़ जाइएगा।
यह अभ्यास एक का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास दो सुनेंगे। अब आप अभ्यास दो के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो, प्रश्न सात।
हिंदी के विकास में गांधी जी के योगदान पर गांधीवादी विचारक अनुपम मिश्र के विचारों को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों ए से एच को भरिए। उनके विचार आपको दो बार सुनाए जाएंगे।
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सबसे बड़े नेता मोहनदास करमचंद गांधी स्वयं भले ही गुजराती भाषी थे, लेकिन हिंदी को लेकर उनका योगदान अतुलनीय रहा है। जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी भारत आए तो उनका पहला आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ। चंपारण में गांधी जी को सबसे बड़ी दिक्कत हिंदी को लेकर आई। इस मामले में कुछ स्थानीय साथियों ने उनकी मदद की, लेकिन गांधी जी ने खुद बहुत जतन से हिंदी सीखी। स्वतंत्रता आंदोलन में आने से पहले गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया और पाया कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश को जोड़ सकती है। इसलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो किसी विदेशी पत्रकार ने उनसे दुनिया को संदेश देने की बात कही। उसका गांधी जी ने जो जवाब दिया वह बहुत मार्मिक है। उन्होंने कहा कि कह दो दुनिया से कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। बेशक इस जवाब के पीछे बंटवारे को लेकर उनका क्षोभ था, लेकिन ध्यान देने की बात है कि आज़ादी के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी ने ही हिंदी से जोड़ा था। यही कारण है कि अहिंदी भाषी नेताओं को भी हिंदी की शरण में आना पड़ा। उनके ज्यादातर भाषण गुजराती शैली की हिंदी में हैं, जिसने जनता के साथ उनका इतना गहरा रिश्ता बनाया। हिंदी के लेखकों कवियों के साथ भी गांधी जी के रिश्ते बहुत गहरे रहे। महाकवि निराला का किस्सा तो प्रसिद्ध है कि जब गांधी जी ने कहा कि हिंदी में कोई टैगोर नहीं है तो निराला भड़क गए और गांधी जी से विरोध किया। गांधी जी ने इसे लेकर अपनी भूल स्वीकार भी की। ऐसा ही पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी के साथ हुआ। उनकी किताब चॉकलेट पर जब पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाया और उसे घासलेटी साहित्य कहा तो मामला गांधी जी तक पहुंचा। गांधी जी ने किताब पढ़ी और उग्र जी को उस आरोप से बरी करते हुए उसे समाज के हित में बताया। उस पर बाकायदा उन्होंने अपने पत्र हरिजन में लेख भी लिखा। हिंदी लेखकों पर उनका क्या प्रभाव रहा ये समझने के लिए उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की रचनाएं पढ़ी जानी चाहिए। प्रेमचंद ने माना भी है कि उनका हिंदी और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना गांधी जी के कारण ही संभव हुआ। गांधी जी जैसी हिंदी लिखते और बोलते थे उसे वे हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहते थे। यह उस समय की संस्कृत निष्ठ हिंदी से अलग थी। यह सहज सरल हिंदी थी जिसका गांधी जी ने एक संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया। उनका यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। गांधी जी सिर्फ राष्ट्रीय नेता ही नहीं थे, अपने समय के बहुत अच्छे पत्रकार भी थे। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं में उन्होंने कई अखबार भी निकाले। हिंदी में उन्होंने दो अखबार निकाले, नवजीवन और हरिजन सेवक। अपने ज्यादातर पत्रों का जवाब भी गांधी जी हिंदी में ही देना पसंद करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा बन सकी तो उसमें गांधी जी का बड़ा योगदान रहेगा।
अनुपम मिश्र जी के विचार अब आप फिर से सुनेंगे।
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सबसे बड़े नेता मोहनदास करमचंद गांधी स्वयं भले ही गुजराती भाषी थे, लेकिन हिंदी को लेकर उनका योगदान अतुलनीय रहा है। जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी भारत आए तो उनका पहला आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ। चंपारण में गांधी जी को सबसे बड़ी दिक्कत हिंदी को लेकर आई। इस मामले में कुछ स्थानीय साथियों ने उनकी मदद की, लेकिन गांधी जी ने खुद बहुत जतन से हिंदी सीखी। स्वतंत्रता आंदोलन में आने से पहले गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया और पाया कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश को जोड़ सकती है। इसलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो किसी विदेशी पत्रकार ने उनसे दुनिया को संदेश देने की बात कही। उसका गांधी जी ने जो जवाब दिया वह बहुत मार्मिक है। उन्होंने कहा कि कह दो दुनिया से कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। बेशक इस जवाब के पीछे बंटवारे को लेकर उनका क्षोभ था, लेकिन ध्यान देने की बात है कि आजादी के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी ने ही हिंदी से जोड़ा था। यही कारण है कि हिंदी भाषी नेताओं को भी हिंदी की शरण में आना पड़ा। उनके ज्यादातर भाषण गुजराती शैली की हिंदी में हैं, जिसने जनता के साथ उनका इतना गहरा रिश्ता बनाया। हिंदी के लेखकों कवियों के साथ भी गांधी जी के रिश्ते बहुत गहरे रहे। महाकवि निराला का किस्सा तो प्रसिद्ध है कि जब गांधी जी ने कहा कि हिंदी में कोई टैगोर नहीं है तो निराला भड़क गए और गांधी जी से विरोध किया। गांधी जी ने इसे लेकर अपनी भूल स्वीकार भी की। ऐसा ही पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी के साथ हुआ। उनकी किताब चॉकलेट पर जब पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाया और उसे घासलेटी साहित्य कहा तो मामला गांधी जी तक पहुंचा। गांधी जी ने किताब पढ़ी और उग्र जी को उस आरोप से बरी करते हुए उसे समाज के हित में बताया। उस पर बाकायदा उन्होंने अपने पत्र हरिजन में लेख भी लिखा। हिंदी लेखकों पर उनका क्या प्रभाव रहा यह समझने के लिए उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की रचनाएं पढ़ी जानी चाहिए। प्रेमचंद ने माना भी है कि उनका हिंदी और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना गांधी जी के कारण ही संभव हुआ। गांधी जी जैसी हिंदी लिखते और बोलते थे उसे वे हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहते थे। यह उस समय की संस्कृत निष्ठ हिंदी से अलग थी। यह सहज सरल हिंदी थी जिसका गांधी जी ने एक संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया। उनका यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। गांधी जी सिर्फ राष्ट्रीय नेता ही नहीं थे, अपने समय के बहुत अच्छे पत्रकार भी थे। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं में उन्होंने कई अखबार भी निकाले। हिंदी में उन्होंने दो अखबार निकाले, नवजीवन और हरिजन सेवक। अपने ज्यादातर पत्रों का जवाब भी गांधी जी हिंदी में ही देना पसंद करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा बन सकी तो उसमें गांधी जी का बड़ा योगदान रहेगा।
अभ्यास दो अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास तीन सुनेंगे। अब आप अभ्यास तीन के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास तीन प्रश्न 8 से 15।
कर्नाटक की प्रतिभाशाली इंजीनियर डॉक्टर गीता मंजुनाथ के साथ नए क्षितिज के संवाददाता हरी साल्वे की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
डॉक्टर गीता मंजुनाथ, नए क्षितिज के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद हरी जी।
गीता जी, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कृत्रिम बुद्धि और मशीन प्रशिक्षण पर शोध कार्य किया, लेकिन कंपनी स्वास्थ्य सेवा की बनाई। हमारे युवा पाठकों को इंजीनियरिंग से स्वास्थ्य सेवा कंपनी की शुरुआत करने तक के अपने सफर के बारे में थोड़ा बताइए कि ये सब कैसे हुआ।
हरी जी, मशीनों से मेरा नाता बचपन से ही रहा है। मेरे पिताजी इंजीनियर तो नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग इंजीनियरों की तरह चलता था। उन्हें घर की खराब हो जाने वाली चीजों की मरम्मत करने का शौक था। वे मुझे भी अपने साथ लगा लेते थे और मशीनों से खेलने के लिए प्रेरित करते रहते थे।
लेकिन आप क्या बनना चाहती थी, इंजीनियर या कुछ और?
असल में मेरी दिलचस्पी मशीनों से ज्यादा कंप्यूटरों में थी। उन दिनों हमारे घरों में कंप्यूटर नहीं थे। कंप्यूटर से मेरी पहली मुलाकात एक प्रदर्शनी में हुई। वहां पर मैंने करीब आधे घंटे तक कंप्यूटर चलाया, जो एक कमरे जितना बड़ा था। इस प्रदर्शनी के बाद कंप्यूटरों के क्रियाकलाप के बारे में जानने की मेरी इच्छा और प्रबल हो गई। सौभाग्य से इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई के दौरान मुझे भारतीय विज्ञान संस्थान के एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला जिसमें हमें 4 उन्नत कंप्यूटर तैयार करने थे।
आपने भारत के सुपर कंप्यूटर परम पर भी तो काम किया है, वह अवसर कैसे मिला?
जी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र यानी सीडेक के सुपर कंप्यूटर परम की टीम में शामिल कर लिया गया और वहां पर मैंने जो कोड तैयार किया उसका प्रयोग आज भी हो रहा है।
तो क्या कृत्रिम बुद्धि और मशीन शिक्षा का काम आपने सीडेक में सीखा?
नहीं, उन्हीं दिनों एक अमरीकी कंप्यूटर कंपनी भारत में अपना एक शोध केंद्र खोल रही थी जिसका उद्देश्य यह साबित करना था कि भारत में भी ऐसे प्रायोगिक शोध हो सकते हैं जो व्यवसायों में काम आ सकें। सीडेक को छोड़कर मैं वहां चली गई और वहां मुझे कृत्रिम बुद्धि और मशीन शिक्षा पर काम करने का अवसर मिला। मुझे लगा कि इन तकनीकों से आने वाले वक्त में बहुत से काम और कुशलता से किए जा सकेंगे।
लेकिन आप तो उसके बाद स्वास्थ्य सेवा की तरफ चली गईं, ऐसा क्यों?
उन्हीं दिनों मुझे एक और कंपनी में काम मिला और वहां मेरे मन में विचार आया कि कृत्रिम बुद्धि की तकनीकों का प्रयोग स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में भी किया जा सकता है। उन्हीं दिनों पता चला कि हमारी 2 रिश्तेदारों को स्तन कैंसर है। इस खबर से परेशान होकर मैंने स्तन कैंसर के बारे में पूरा अध्ययन किया। तब मुझे पता चला कि ज्यादातर मामलों में स्तन कैंसर का प्रामाणिक रूप से तब पता लगता है जब वह फैल चुका होता है, लेकिन कृत्रिम बुद्धि के जरिए स्तन कैंसर का पता आसानी से और उसकी आरंभिक अवस्था में लग सकता है, जिसके बाद उसका शर्तिया इलाज संभव है।
और उसके बाद आपने अपनी कंपनी बना ली?
जी हाँ, उसके बाद कुछ निवेशकों की मदद से मैंने अपनी स्वास्थ्य सेवा कंपनी खोली जहां हम किसी रेडिएशन के बिना कृत्रिम बुद्धि तकनीक से जांच करके स्तन कैंसर की संभावना या आरंभिक अवस्था के बारे में बताते हैं। हमारी कंपनी ने भारत के 10 बड़े शहरों के अस्पतालों में दर्जनों जांच केंद्र खोल दिए हैं और अब हम इस तकनीक को विश्व स्तर पर सुलभ कराने की कोशिश में हैं ताकि महिलाएं निर्भय होकर जी सकें।
डॉक्टर गीता मंजुनाथ, अपनी पढ़ाई, शोध और कंपनी की रोचक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास 3 की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। डॉक्टर गीता मंजुनाथ, नए क्षितिज के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद हरि जी।
गीता जी, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कृत्रिम बुद्धि और मशीन प्रशिक्षण पर शोध कार्य किया, लेकिन कंपनी स्वास्थ्य सेवा की बनाई। हमारे युवा पाठकों को इंजीनियरिंग से स्वास्थ्य सेवा कंपनी की शुरुआत करने तक के अपने सफर के बारे में थोड़ा बताइए कि ये सब कैसे हुआ।
हरि जी, मशीनों से मेरा नाता बचपन से ही रहा है। मेरे पिताजी इंजीनियर तो नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग इंजीनियरों की तरह चलता था। उन्हें घर की खराब हो जाने वाली चीजों की मरम्मत करने का शौक था। वे मुझे भी अपने साथ लगा लेते थे और मशीनों से खेलने के लिए प्रेरित करते रहते थे।
लेकिन आप क्या बनना चाहती थीं, इंजीनियर या कुछ और?
असल में मेरी दिलचस्पी मशीनों से ज्यादा कंप्यूटरों में थी। उन दिनों हमारे घरों में कंप्यूटर नहीं थे। कंप्यूटर से मेरी पहली मुलाकात एक प्रदर्शनी में हुई। वहां पर मैंने करीब आधे घंटे तक कंप्यूटर चलाया जो एक कमरे जितना बड़ा था। इस प्रदर्शनी के बाद कंप्यूटरों के क्रियाकलाप के बारे में जानने की मेरी इच्छा और प्रबल हो गई। सौभाग्य से इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई के दौरान मुझे भारतीय विज्ञान संस्थान के एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला जिसमें हमें 4 उन्नत कंप्यूटर तैयार करने थे।
आपने भारत के सुपर कंप्यूटर परम पर भी तो काम किया है, वह अवसर कैसे मिला?
जी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र यानी सीडेक के सुपर कंप्यूटर परम की टीम में शामिल कर लिया गया और वहां पर मैंने जो कोड तैयार किया उसका प्रयोग आज भी हो रहा है।
तो क्या कृत्रिम बुद्धि और मशीन शिक्षा का काम आपने सीडेक में सीखा?
नहीं, उन्हीं दिनों एक अमरीकी कंप्यूटर कंपनी भारत में अपना एक शोध केंद्र खोल रही थी जिसका उद्देश्य यह साबित करना था कि भारत में भी ऐसे प्रायोगिक शोध हो सकते हैं जो व्यवसायों में काम आ सकें। सीडेक को छोड़कर मैं वहां चली गई और वहां मुझे कृत्रिम बुद्धि और मशीन शिक्षा पर काम करने का अवसर मिला। मुझे लगा कि इन तकनीकों से आने वाले वक्त में बहुत से काम और कुशलता से किए जा सकेंगे।
लेकिन आप तो उसके बाद स्वास्थ्य सेवा की तरफ चली गईं, ऐसा क्यों?
उन्हीं दिनों मुझे एक और कंपनी में काम मिला और वहां मेरे मन में विचार आया कि कृत्रिम बुद्धि की तकनीकों का प्रयोग स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में भी किया जा सकता है। उन्हीं दिनों पता चला कि हमारी 2 रिश्तेदारों को स्तन कैंसर है। इस खबर से परेशान होकर मैंने स्तन कैंसर के बारे में पूरा अध्ययन किया। तब मुझे पता चला कि ज्यादातर मामलों में स्तन कैंसर का प्रामाणिक रूप से तब पता लगता है जब वह फैल चुका होता है, लेकिन कृत्रिम बुद्धि के जरिए स्तन कैंसर का पता आसानी से और उसकी आरंभिक अवस्था में लग सकता है जिसके बाद उसका शर्तिया इलाज संभव है।
और उसके बाद आपने अपनी कंपनी बना ली?
जी हाँ, उसके बाद कुछ निवेशकों की मदद से मैंने अपनी स्वास्थ्य सेवा कंपनी खोली जहां हम किसी रेडिएशन के बिना कृत्रिम बुद्धि तकनीक से जांच करके स्तन कैंसर की संभावना या आरंभिक अवस्था के बारे में बताते हैं। हमारी कंपनी ने भारत के 10 बड़े शहरों के अस्पतालों में दर्जनों जांच केंद्र खोल दिए हैं और अब हम इस तकनीक को विश्व स्तर पर सुलभ कराने की कोशिश में हैं ताकि महिलाएं निर्भय होकर जी सकें।
डॉक्टर गीता मंजुनाथ, अपनी पढ़ाई, शोध और कंपनी की रोचक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4 प्रश्न 16 से 23।
सोशल मीडिया की चुनौतियों पर समाजशास्त्री रितिका निगम और संचार विशेषज्ञ सुमित कृष्णन की बातचीत को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
सुमित, आप इतना तो मानेंगे कि सोशल मीडिया की शुरुआत अधिक से अधिक लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और विचारों के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए हुई थी, लेकिन अब सोशल मीडिया लोगों के बीच द्वेष और दूरी की भावना फैलाने का जरिया बनता जा रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि एक सी मानसिकता और विचारधारा वाले लोगों के गुट बन गए हैं जो केवल जहर उगल रहे हैं, जिससे समाज विषाक्त हो रहा है। एक घटना कहीं घटती है तो उसे सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। लोग उसकी तह में जाने की बजाय उसे ही सही समझकर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। पुरानी कहावत है कि किसी ने कह दिया कि कौवा कान ले गया तो लोग अपना कान न देखकर कौवे के पीछे भागने लगते हैं। आज यही सोशल मीडिया का हाल है। बताइए, इससे हमारा समाज कौन सी सामाजिकता सीख रहा है?
रितिका, आपकी बात सही है, लेकिन इसमें सोशल मीडिया का दोष कहां है? दोष उसके दुरुपयोग का है। मैं जब भी छात्रों और कर्मचारियों से मिलता हूं तो उन्हें याद दिलाता हूं कि जो बात जिंदगी में लागू होती है वही सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताना और फिजूल के खेलों और बातों में उलझे रहना खतरनाक है और उसका नुकसान हमें जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। सोशल मीडिया का प्रयोग केवल मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि रचनात्मक और रणनीतिक उद्देश्य से भी करना चाहिए। अपने रिश्तेदारों और मित्रों के संपर्क में रहने के साथ साथ अपने संपर्क और प्रभाव का दायरा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी युक्तियों और सूझबूझ को साझा करने के साथ साथ समस्याओं के हल खोजें, नए नए गुरों, नए नए अवसरों की तलाश में रहें, अपनी बेबाक कहें, दूसरों की बेबाक सुनें, पर मर्यादा का ध्यान भी रखें। और हाँ, ऐसी सामग्री का आदान प्रदान करें जो रचनात्मक और प्रेरणादायक हो, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जो साझा करते हैं उससे आपकी एक सोशल छवि भी बनती है। सोशल मीडिया मौज मस्ती और मेलजोल के मंच के साथ साथ नौकरियों और व्यापार का भी प्रमुख मंच बन चुका है। आज कोई बड़ा व्यापार सोशल मीडिया के बिना नहीं चल सकता और अच्छी नौकरियां भी इसके बिना नहीं मिलती।
सुमित, ये सब बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन आंकड़े दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया समाधान की बजाय समस्या बनता जा रहा है। इसका असली उद्देश्य तो आपसी भाईचारा और मेलजोल बढ़ाना था, लेकिन देखिए कैसे परिवार और समाज में अकेलेपन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगर घर में चार सदस्य हैं तो शाम को दफ्तर से आने के बाद चारों अलग अलग दिशाओं में बैठकर अपने अपने स्मार्टफोन में खो जाते हैं। एक दूसरे से बातचीत में उन्हें वह आनंद नहीं आता जो सोशल मीडिया पर आता है। यानी इसने हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। घरों से हंसी ठहाके और बहस की आवाजें गायब हो गई हैं। हर व्यक्ति अपने आप में अकेले बैठना चाहता है और यह अकेलापन ही तनाव, अवसाद और मानसिक विकृति को बढ़ाता है, जिसका शिकार हमारा युवा वर्ग हो रहा है। युवाओं पर हुए एक शोध के मुताबिक जो युवा सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं वे खुद पर ज्यादा दबाव तो महसूस करते ही हैं, साथ ही वे सामाजिक रूप से भी दूसरों से कटे रहते हैं।
देखो रितिका, जो लोग समाज से कटकर सोशल मीडिया में समाज देखते हैं वे बड़ी भूल करते हैं। सोशल मीडिया पर भी वही संदेश लोकप्रिय होते हैं जो सामाजिक अनुभवों पर आधारित होते हैं। सोशल मीडिया के नए लोकप्रिय मंचों पर रोमांचक यात्राओं, पार्टियों और प्रस्तुतियों वाले संदेश जितने पसंद किए जाते हैं उतनी दूसरी सामग्री नहीं। इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग मेलजोल और चर्चाओं को अपने दायरे से और आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि दायरे को बंद करके सोशल मीडिया से ही चिपक जाने में। जमाना ब्रांडिंग का है। सोशल मीडिया ब्रांडिंग का सबसे सुलभ और सशक्त साधन बन चुका है। लोगों को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया आपकी सामाजिकता का विकल्प नहीं है, बल्कि उसको आगे बढ़ाने का जरिया है। इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग अपनी छवि या ब्रांड बनाने और समझ बूझ के दायरे को बढ़ाने में करना चाहिए, न कि दुनिया जहान से कट जाने में।
अभ्यास चार की इस बातचीत को अब आप फिर से सुनेंगे। सुमित, आप इतना तो मानेंगे कि सोशल मीडिया की शुरुआत अधिक से अधिक लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और विचारों के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए हुई थी, लेकिन अब सोशल मीडिया लोगों के बीच द्वेष और दूरी की भावना फैलाने का जरिया बनता जा रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि एक सी मानसिकता और विचारधारा वाले लोगों के गुट बन गए हैं जो केवल जहर उगल रहे हैं, जिससे समाज विषाक्त हो रहा है। एक घटना कहीं घटती है तो उसे सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। लोग उसकी तह में जाने की बजाय उसे ही सही समझकर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। पुरानी कहावत है कि किसी ने कह दिया कि कौवा कान ले गया तो लोग अपना कान न देखकर कौवे के पीछे भागने लगते हैं। आज यही सोशल मीडिया का हाल है। बताइए, इससे हमारा समाज कौन सी सामाजिकता सीख रहा है?
रितिका, आपकी बात सही है, लेकिन इसमें सोशल मीडिया का दोष कहां है? दोष उसके दुरुपयोग का है। मैं जब भी छात्रों और कर्मचारियों से मिलता हूँ तो उन्हें याद दिलाता हूँ कि जो बात जिंदगी में लागू होती है वही सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताना और फिजूल के खेलों और बातों में उलझे रहना खतरनाक है और उसका नुकसान हमें जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। सोशल मीडिया का प्रयोग केवल मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि रचनात्मक और रणनीतिक उद्देश्य से भी करना चाहिए। अपने रिश्तेदारों और मित्रों के संपर्क में रहने के साथ साथ अपने संपर्क और प्रभाव का दायरा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी युक्तियों और सूझबूझ को साझा करने के साथ साथ समस्याओं के हल खोजें, नए नए गुरों नए नए अवसरों की तलाश में रहें, अपनी बेबाक कहें दूसरों की बेबाक सुने पर मर्यादा का ध्यान भी रखें। और हाँ, ऐसी सामग्री का आदान प्रदान करें जो रचनात्मक और प्रेरणादायक हो, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जो साझा करते हैं उससे आपकी एक सोशल छवि भी बनती है। सोशल मीडिया मौज मस्ती और मेल जोल के मंच के साथ साथ नौकरियों और व्यापार का भी प्रमुख मंच बन चुका है। आज कोई बड़ा व्यापार सोशल मीडिया के बिना नहीं चल सकता और अच्छी नौकरियां भी इसके बिना नहीं मिलती।
सुमित, ये सब बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन आंकड़े दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया समाधान की बजाय समस्या बनता जा रहा है। इसका असली उद्देश्य तो आपसी भाईचारा और मेलजोल बढ़ाना था, लेकिन देखिए कैसे परिवार और समाज में अकेलेपन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगर घर में चार सदस्य हैं तो शाम को दफ्तर से आने के बाद चारों अलग अलग दिशाओं में बैठकर अपने अपने स्मार्टफोन में खो जाते हैं। एक दूसरे से बातचीत में उन्हें वह आनंद नहीं आता जो सोशल मीडिया पर आता है। यानी इसने हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। घरों से हंसी ठहाके और बहस की आवाजें गायब हो गई हैं। हर व्यक्ति अपने आप में अकेले बैठना चाहता है और यह अकेलापन ही तनाव, अवसाद और मानसिक विकृति को बढ़ाता है, जिसका शिकार हमारा युवा वर्ग हो रहा है। युवाओं पर हुए एक शोध के मुताबिक जो युवा सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं वे खुद पर ज्यादा दबाव तो महसूस करते ही हैं, साथ ही वे सामाजिक रूप से भी दूसरों से कटे रहते हैं।
देखो रितिका, जो लोग समाज से कटकर सोशल मीडिया में समाज देखते हैं वे बड़ी भूल करते हैं। सोशल मीडिया पर भी वही संदेश लोकप्रिय होते हैं जो सामाजिक अनुभवों पर आधारित होते हैं। सोशल मीडिया के नए लोकप्रिय मंचों पर रोमांचक यात्राओं, पार्टियों और प्रस्तुतियों वाले संदेश जितने पसंद किए जाते हैं उतनी दूसरी सामग्री नहीं। इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग मेलजोल और चर्चाओं को अपने दायरे से और आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि दायरे को बंद करके सोशल मीडिया से ही चिपक जाने में। जमाना ब्रांडिंग का है। सोशल मीडिया ब्रांडिंग का सबसे सुलभ और सशक्त साधन बन चुका है। लोगों को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया आपकी सामाजिकता का विकल्प नहीं है बल्कि उसको आगे बढ़ाने का जरिया है। इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग अपनी छवि या ब्रांड बनाने और समझ बूझ के दायरे को बढ़ाने में करना चाहिए, न कि दुनिया जहान से कट जाने में।
अभ्यास चार और यह परीक्षा समाप्त हुई।
दिस इज द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन।